پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے, جس کے بعد دونوں قرنطینہ میں چلے گئے ہیں. امریکی صدر کا کورونا ٹیسٹ ایسے موقع پر مثبت آیا ہے جب وہ انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں. منگل کو انہوں نے ریاست اوہایو میں پہلے صدارتی مباحثے میں شرکت کی تھی, جس کے بعد بدھ کو صدر ٹرمپ نے منیسوٹا میں انتخابی ریلی سے بھی خطاب کیا تھا. صدر ٹرمپ نے جمعے کو اپنا ٹیسٹ مثبت آنے سے 2 قبل ایک ٹویٹ میں بتایا تھا کہ ان کی مشیر ہوپ ہکس کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے, جس کے بعد انہوں نے بھی ٹیسٹ کروایا ہے, جس کے نتیجے کے وہ منتظر ہیں. ہوپ ہکس صدر ٹرمپ کی نہایت قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتی ہیں اور وہ ان کے مشیر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہی ہیں. صدر ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے جواب میں نائب صدر مائک پینس نے ٹویٹ کیا کہ کیرن اور میں اپنے پیارے دوستوں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کو محبت بھری پرخلوص دعائیں بھیج رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ ان کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. صدر ٹرمپ کے معالج نیوی کمانڈر ڈاکٹر شان کانلی کے مطابق صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ قرنطینہ کے دوران وائٹ ہاؤس میں ہی رہیں گے. انہوں نے صحافیوں کو رات تقریباً 1 جاری کیے گئے میمورینڈم میں بتایا کہ جمعرات کی شام صدر ٹرمپ کا کرونا ٹیسٹ مثبت ہونے کی تصدیق ہوئی تھی. ڈاکٹر شان کانلی کے مطابق وائٹ ہاؤس کی میڈیکل ٹیم صدر ٹرمپ کی دیکھ بھال کرے گی. یہ بات واضح نہیں ہے کہ اس صورتحال سے صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے, تاہم فی الحال انہوں نے انتخابی ریلیوں سے خطاب کرنے اور فنڈ ریزنگ کے لیے سفر کا ارادہ ترک کر دیا ہے. وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کرویشیا جاتے ہوئے اپنے جہاز میں میڈیا کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور COVID-19 سے متاثر نہیں ہیں. پومپیو نے کہا کہ وہ کورونا وائرس کا ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں. وزیر خارجہ پومپیو نے اس موقع پر کہا کہ ہم صدر ٹرمپ اور خاتون اول کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. ٹیکساس سے ڈیموکریٹک کانگریس مین جواکان کاسترو نے ایک ٹویٹ میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض صدر ٹرمپ کی صحت سے متعلق معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. امریکہ میں شہری حقوق کی رہنما جیسی جیکسن نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ دعا گو ہیں کہ صدر ٹرمپ اور خاتون اول پر اس وائرس کے شدید اثرات نہ ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم سب کو صدر ٹرمپ اور خاتون اول کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرنی چاہیے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. جمعے کو اپنے ایک ٹویٹ میں عمران خان نے کہا کہ وہ صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. صدر ٹرمپ کی کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی اطلاعات کے باعث عالمی منڈیوں میں مندی کا رجحان دیکھا گیا ہے. کرونا سے متعلق دوسری خبریں یہ ہیں کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے پڑوسی ممالک کے ساتھ سرحدیں جزوی طور پر کھولنے کا اعلان کیا ہے. بھارت میں مزید 81,000 سے زیادہ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں, جس کے بعد کیسز کی کل تعداد 63,94,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. بھارت کی وزارت صحت کے مطابق عالمی وبا کا شکار ہو کر مرنے والوں کی مجموعی تعداد 99,773 ہو گئی ہے. افغانستان کی وزارت صحت نے جمعے کے روز COVID-19 کے 5 نئے کیسز کی خبر دی ہے. 24 کے دوران سامنے آنے والے ان کیسز کے بعد ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 39,290 ہو گئی ہے. COVID-19 کی وبا سے اب تک اموات کی تعداد 1,458 ہے, جبکہ 32,842 صحت یاب ہو چکے ہیں. دنیا میں آن لائن خرید و فروخت کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سر فہرست امیزون نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا سے اب تک اس کے 19,800 سے زائد ملازمین کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے. امریکی کمپنی امیزون نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس کے 13,70,000 فرنٹ لائن ملازمین عالمی وبا کا شکار ہوئے ہیں, جن میں گروسری اسٹور ہول فوڈس مارکیٹ کے ملازمین بھی شامل ہیں. امیزون کے بقول اس کے ملازمین میں بیماری کا تناسب اندازوں سے کم رہا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہی ہیں راؤنڈ ٹیبل.
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہیں آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ، اور ہم بات کریں گے کووڈ 19 کے دوران پاکستان میں بچوں کی صحت کی صورتحال پر۔ یہ موضوع خاص طور سے اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک طویل التوا کے بعد گزشتہ ہفتے پاکستان بھر میں بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کی قومی مہم کا انعقاد کیا گیا ہے، اور 29 ستمبر کو دنیا بھر میں دل کی بیماریوں کے بارے میں آگہی کا بین الاقوامی دن منایا گیا۔ اس دن کا مقصد نہ صرف یہ کہ مختلف نوعیت کے امراض قلب کے اعداد و شمار کا جائزہ لینا ہے، بلکہ ان کے انسداد کے لیے آگہی فراہم کرنا بھی ہے۔ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے وہ اعداد و شمار حیران کن ہوں جو پاکستان میں بچوں کو پیدائش سے لاحق دل کے امراض کے بارے میں ہیں، تو اس بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے آج چار ماہرین کو۔ ڈاکٹر نصرت فاروقی پاکستان کی پہلی ایسی یورولوجسٹ ہیں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم باہر سے حاصل کی ہے۔ انہیں 2018 میں ان کی خدمات پر پبلک سروس کے شعبے میں تمغہ امتیاز دیا گیا، اور اسی طرح یہ پاکستان نیوی کی جانب سے سرجن کمانڈر کا آنریری رینک حاصل کرنے والی پہلی خاتون بھی ہیں۔ ان کا ایک اہم کام الفت نامی اس این جی او کا قیام ہے جس میں اب تک 700 سے زیادہ بچوں کی مختلف نوعیت کی سرجریز کروائی جا چکی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر علی فیصل سلیم ہیں، یہ الفت کے کو فاؤنڈر ہیں، آغا خان ہاسپٹل میں بچوں میں انفیکشس ڈیزیزز کے ایک ماہر ہیں، اور سیج نامی اس بین الاقوامی تنظیم میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں جو صحت کا ایک بہت ہی اہم بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے۔ اپنے اسپتال سے باہر ڈاکٹر فیصل کا ایک بہت اہم کام صحت کے بارے میں آگہی فراہم کرنا اور پاکستان کو مختلف بین الاقوامی فورم سے جوڑنا ہے۔ ڈاکٹر عبدالستار شیخ بچوں میں دل کی بیماریوں کے ماہر ہیں، اور پاکستان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز یعنی NICVD میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ ان کا یہ ایک پیشن ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو بچوں میں دل کی ان بیماریوں کو ختم کیا جائے جن کا فوری طور پر علاج ممکن ہے، یعنی اگر پیدائش کے فوراً بعد ان کی دیکھ بھال کی جائے اور ان کی سرجری کر دی جائے تو یہ بچے زندگی بھر صحت مند رہ سکتے ہیں۔ ان سے ہم خاص طور پر بات کریں گے ان سیٹلائٹ سینٹرز کے بارے میں جو پاکستان کے چھوٹے شہروں اور قصبوں کے ایک نیٹ ورک کو NICVD سے جوڑتے ہیں۔ ہمارے چوتھے مہمان یاسر شفیق صاحب ہیں جو ہیلتھ پالیسی کے ایک ماہر ہیں، اب اس وقت PhD کر رہے ہیں، وائٹل پاکستان نامی NGO سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ یہ گاوی کے رکن ہیں جو دنیا بھر میں ویکسینز کی فراہمی میں ایک بہت ہی اہم مقام رکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں ایک مختصر بریک لیتے ہیں تاکہ آپ نوٹ کر سکیں کہ ہمارے ان پروگراموں کو آپ ہماری ویب سائٹ پر کس طرح سن سکتے ہیں۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔
ڈاکٹر علی فیصل، آپ مجھے تھوڑا سا اگر کوئی چیز جو ہے مس ہو گئی ان ماہرین کے بارے میں ہمیں کہنی چاہیے تھی تو آپ وہ کہیے، پھر ہم صحت پہ بات کریں گے۔
جی بہت شکریہ شہناز آپ کا، اور بس میں پہلے تو ڈاکٹر نصرت کے متعلق بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر نصرت کا میں جب خان میں انٹرنشپ کر رہا تھا، ہاؤس جاب کر رہا تھا، ڈاکٹر نصرت فاروقی میری پہلی استاد تھی، وہاں پہ ریزیڈینسی کر رہی تھی یورولوجی کے اندر، وہاں سے انہوں نے ہمیں جو بھی کام ہم پبلک سروس کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں ہیلپ کی، گرو کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ یاسر ایک بہت امپورٹنٹ جس کو ہم کہتے ہیں گاوی، گلوبل الائنس آف ویکسین انیشیٹو، اس میں پاکستان کی جو سول سروسز آرگنائزیشن ہے CSOs ہیں ان کو لیڈ کرتے ہیں، اور یہ اعزاز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یاسر کے پاس ایک یونیک اعزاز ہے ایز اے فارماسسٹ اور پبلک ہیلتھ فزیشین۔ تو جیسے آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے بہت کام کیا، وہ خود بھی بتائیں گے۔
بالکل ڈاکٹر فیصل، اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز تو ظاہر ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور سبھی قابل قدر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بالکل مطلب جن کا یونیک ہوتا ہے کام۔ تو اس وقت بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہ ظاہر ہے بہت سارے صحت کے جو پروگرام ہیں اور جو وسائل ہیں وہ سب متاثر ہوئے کووڈ کی وجہ سے، کیونکہ توجہ بھی ادھر رہی، پھر یہ کہ ہاسپٹلز میں انفیکشن کی ڈر سے بہت سی دفعہ کوئی سوائے اس کے ایمرجنسی جو سرجریز تھیں یہاں امریکہ میں تو تقریباً ساری ختم ہو گئی تھیں، حتیٰ کہ کینسر کی بھی سوائے اس کے کہ ان کی انتہائی ضرورت ہو. تو میں ڈاکٹر فیصل آپ سے کہوں گی کہ یونائیٹڈ نیشنز کی بہت سی رپورٹوں میں اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، ڈبلیو ایچ او کی بھی. تو بتائیے تھوڑا سا ہمیں کہ پاکستان میں جو صحت کے پروگرام ہیں بچوں کے، ان پر کیا اثر پڑا؟
یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے شناز. کافی عرصہ ہم میرے خیال ہے کہ یہ مارچ سے پاکستان میں اسٹارٹ ہوا تھا، فیبری کے لاسٹ سے اور مارچ کے شروع کے اندر جب ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اسٹارٹ کیا تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ بچوں کی صحت کے لیے نظر انداز ہوئی وہ ویکسینیشن تھی، جس کو ہم روٹین امیونائزیشن کہتے ہیں. کافی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچوں کی روٹین امیونائزیشن متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے اپیرنٹلی یہ اچھی بات ہے کہ ابھی تک کوئی آؤٹ بریک نہیں ہوا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انٹر منگلنگ بہت کم ہوئی ہے، لیکن ایک بہت زیادہ کیوٹک سچویشن ہوئی ہے جہاں ڈیمانڈ جو ہے بہت اگر لوگوں کی تھی اور ہم پوری نہیں کر پائے. دوسرے کہ لوگ تھوڑے سے ڈرے بھی تھے، پیرنٹس بہت ڈرے ہوئے تھے بچوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے. ایک سوسائٹی کا جو امپیکٹ تھا جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑوں کے اندر یہ خاص بیماری ہو رہی تھی، خاص طور پہ جن کے اندر کوئی کو موربڈز ہوں، لیکن بچے الحمدللہ کافی سیف رہے. اور یہ میڈیکل سائنس نے ثابت بھی کیا ہے کہ یہ کووڈ 19 جو ہے یہ بڑوں کو اندر زیادہ اثر انداز کرتی ہے. بچے کافی زیادہ پروٹیکٹڈ رہے. میں خود بھی انفیکشس ڈیزیز کے شعبے سے وابستہ ہوں، میں نے بہت سارے بچوں کا علاج کیا ہے کووڈ کے، لیکن میں نے کوئی بھی بہت سک بچہ نہیں دیکھا. اور بچے الحمدللہ آتے تھے اور جلدی سے صحت یاب ہو کے گھر چلے جاتے تھے. سو پہلا جو شعبہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بالکل یہی ہے جس کے اندر امیونائزیشن کہتے ہیں ہم، جس کی وہ متاثر ہوئی. دوسرے پہ اگر آپ کہیں بچوں کی گروتھ، وہ بہت زیادہ نظر انداز ہوئی ان ٹرمز آف کوگنیشن، ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ. جو اسکول بند ہوئے تو وہ بہت زیادہ سیکھ نہیں سکے، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جیسے اوبیسٹی ہو گئی، جیسے بلڈ پریشر بڑھ گیا، جیسے کہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، والدین بھی گھروں میں تھے، اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کا ٹائم بڑھ گیا، اسکرین ٹائم بڑھ گیا، جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو کہ بچوں میں ہم یوزلی نہیں دیکھ رہے ہو رہے ہوتے وہ دوسرے نمبر پہ آنے لگے. تیسرا اگر ایک عام فینومینا ہم دیکھے جائے کہ جس سے ہم تھوڑا سا پروٹیکٹ رہے وہ یہ کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے، تو ان کو وہ بیماریاں جو کہ عام طور سے گھروں سے باہر نکلنے اور انٹر منگل ہونے سے ہوتی ہیں، جیسے کہ ریسپیریٹری پرابلم، جیسے کہ ڈائریا، جیسے کہ ٹائیفائڈ، اس سے ہم زیادہ بچے رہے.
تو میں ڈاکٹر نصرت فاروقی آپ سے اب پوچھوں گی کہ ایک تو آپ کے اپنے شعبے میں یعنی یورولوجی کے شعبے میں آپ نے بچوں میں کووڈ 19 کے کیا اثرات دیکھے، اور پھر خاص طور سے آپ کا جو ایک آپ کے این جی او ہے الفت کے نام سے جو 700 سے زیادہ بچوں کی سرجریز کروا چکی ہے مفت، اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن پہلے آپ کے کن شعبوں میں آپ سمجھتی ہیں کہ خاص طور پہ اب توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے؟
ایکچولی میں ایڈلٹ یورولوجسٹ ہوں، سو بچوں سے ڈائریکٹ لنک تو میرا نہیں رہا. آئی واز لکی انف ٹو لیڈ دا پروگرام ایٹ ایکسپو سینٹر جو ہمارا آئسولیشن سینٹر بنا تھا.
جی
اس میں اگر ہم نے 1200 پیشنٹس ایڈلٹ ایڈمٹ کیے تو اس ایڈلٹ پاپولیشن سے آئی تھنک ہم نے کوئی 7 یا 10 بچے ایڈمٹ ہوئے ہوں گے کووڈ کے. دس واز اونلی فار کووڈ پیشنٹس. سو اس میں وہ سارے بچے جیسے علی نے کہا میں ان سے بالکل اتفاق کروں گی کہ بچوں میں زیادہ اس کا تناسب ایک تو کم رہا اور بچوں میں بھی شدید طور پہ اس کا رسپانس نہیں آیا، تو بچے الحمدللہ کافی محفوظ رہے اس سے.
اچھا، اور ابھی آپ کے پروگرام کی طرف آتے ہیں الفت کی طرف، لیکن پہلے ڈاکٹر عبدالستار شیخ صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے آپ کے ظاہر ہے کہ دل کی بیماریاں جو ہیں ان کی جو سرجری ہے، آپ بچوں کے دل کی بیماریوں کے ماہر ہیں، تو اس میں کیا ایسا ہوا کہ اتنا آپ کے ہاسپٹل میں اس قدر برڈن تھا کہ بچوں کی صحت کے دیگر مسائل پر آپ لوگ توجہ نہیں دے سکے یا اس طرح کی صورتحال نہیں تھی؟
ہاں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ کووڈ کے دوران جو بچے تھے جن کو بیسیکلی دل کے مسائل تھے، تو کووڈ میں ہم لوگوں نے ایک چیز دیکھی کہ کووڈ کے ساتھ دل کی ایسوسیشن یا سمجھے کہ دل کی کمپلیکیشن کے کیسز بھی ہم لوگ نے دیکھے جو کافی تعداد میں تھے، جس پہ ہم لوگوں نے ڈبلیو ایچ او کے ساتھ کام کیا جس میں آخان کی ٹیم شامل تھی، وہاں سے ہمارے دوست تھے، این ایس یو ڈی سے ہم لوگ تھے اور چلڈرن ہاسپٹل سے اور دوسری جگہوں سے مل کے ہم لوگوں نے کام کیا. کوئی ہم لوگوں نے 40 کے قریب وہ کیسز دیکھے جو بچے کووڈ کی وجہ سے دل کی بیماریوں میں، جسے ہم کہتے ہیں کہ بعد میں دل کی بیماریاں یا اکوائرڈ ہارٹ ڈیزیز ڈیولپ ہوئی، زیادہ تر ان میں دل کافی بچوں کا کمزور ہو گیا، لیکیج شروع ہو گئی یا ان کی جو نسیں ہوتی ہیں وہ خراب ہو گئی یا دل کے گرد پانی آ گیا. اور ये कॉम्प्लिकेशन हम लोगों ने उस पर नोट की जब कोविड हो चुका था बच्चों को और उसको कुछ हफ्ते गुजर चुके थे, तो ये एक किस्म की सीरियस कॉम्प्लिकेशन थी। इसमें ये कि डेथ रेट या कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा होता है अगर उनको टाइमली ट्रीट ना किया गया। स्टार्टिंग में तो किसी को पता नहीं चला, हर कोई इसको समझे कि और कोई डिजीज समझ रहा था। बाद में जब इंटरनेशनली सबने आइडेंटिफाई किया तो WHO वालों के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया और हम लोगों ने 40 केसेस पाकिस्तान से रजिस्टर्ड किए, उनको ट्रीट किया और माशाल्लाह से ये कि जब वो हमें सबको पता चल गया तो हम लोगों ने अवेयरनेस के लिए ऑनलाइन वेबिनार्स भी किए, सब लोगों ने मिलकर WHO को भी इन्वॉल्व किया, जो हमारी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है उनको इन्वॉल्व करके अवेयरनेस स्टार्ट की कि वो बच्चे जिनमें आपको लगे कोविड हुआ हो या कोविड लाइक सिम्टम्स हो चुके हो पहले कुछ हफ्ते पहले, बाद में अगर आपके पास कुछ मखसूस निशानियों के साथ आते हैं तो फौरन आप उनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजें, क्योंकि जैसे ही जल्दी से हम उसको डायग्नोसिस कर रहे थे उतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर रहे थे तो उनकी आउटकम बेहतर था, दिल रिकवर हो जाता था, चीजें बेहतर हो जाती थी। तो वो हम लोगों ने WHO के साथ काम करके हम लोगों ने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जर्नल में पब्लिश करवाया डेटा मल्टी कंट्री लेवल पे स्टडीज थी, तो वो पब्लिश हो गया। दूसरा हमारी स्टडीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि जिनको दिल के मसाइल थे और कोविड के दौरान वो निगलेक्ट हुए हैं, निगलेक्ट इसलिए हुए कि वो ज्यादा ट्रांसपोर्ट का मसला था, हमारे ज्यादातर बच्चे डिस्टल एरियाज में रहते हैं या फैमिली अवेयरनेस नहीं होती या वहां पे है कि वो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं तो वो रीच नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने ये किया कि अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया कि लोकल जो जनरल प्रैक्टिशनर है आसपास के छोटे छोटे सिटीज के या गाँव के, उनको ये अवेयरनेस दी कि हमारे जो सेटेलाइट सेंटर्स हैं, जो हम लोगों ने सेटेलाइट सेंटर या हॉस्पिटल्स डिफरेंट सिटीज में बनाए, वहां तक आप बच्चे को पहुंचा दें।
डॉक्टर शेख, आपसे मैं अभी दोबारा आपके पास आती हूँ, पहले हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं यासिर शफीक साहब से। जी यासिर साहब, थोड़ा सा आप हमें अब बताइए कि ज़ाहिर आपका काम इस लिहाज से बड़ा अहम है कि उसमें एक रबते का काम भी आपका, तो कुछ थोड़ी तफसील बताइए।
तो बहुत सारी चीजें अली फैसल ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुके हैं कि किस टाइप के चैलेंजेस जो थे वो फेस किए। तो ही राइटली सेड के जो इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन सर्विस जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है जिसमें आप बच्चे को 5 साल तक के कम उम्र बच्चों को आप हिफाजती टीके देते हैं, लगाते हैं और आप प्रिवेंटेबल डिजीजेस को अवॉइड करते हैं और बहुत सारी मोर्टेलिटी को रिड्यूस करते हैं। तो कराची के अंदर अगर हम सिर्फ बात करें तो तकरीबन 50% बच्चे जो हैं वो ये पूरा जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ 23 मार्च से ऑनवर्ड, तकरीबन 50% बच्चे जो हैं वो अपने रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए विजिट जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके। सिर्फ कराची के अंदर डेली बेसिस पे तकरीबन 2500 से 2700 बच्चे जो हैं वो मिस हुए हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, एक तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम बहुत सारे लोग जो हेल्थ सर्विसेज जो कम्युनिटी लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं हम तैयार नहीं थे, उसमें गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हैं, CSO भी शामिल हैं, हमें तो अपने आप को तैयार करने के लिए अपने वर्कर को ट्रेन करने के लिए SOPs को कि वो फॉलो कर सकें सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, और फिर एजुकेशन क्या प्रोवाइड करनी है कम्युनिटी लेवल के ऊपर कि लोगों के अंदर जो ये कोविड का खौफ डेवलप हुआ है जो कि जेन्युइन है उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह से उनको रागिब कर सकते हैं कि वो वापस उन सर्विसेज की तरफ आए। ये एक की फैक्टर था जो कम्युनिटी लेवल के ऊपर जितनी भी CSOs हैं जो गवर्नमेंट के लोग काम कर रहे हैं तो किस तरह से हम सब ने मिलके जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर भी मिलके काम किया। एक चीज जो हमने एक्सपीरियंस की वो ये थी कि चूंकि लोगों के जहन में खौफ था तो हिफाजती टीके जो है उनके हवाले से एक चैलेंज हमेशा से रहा है कि उसकी डिमांड जो है वो लो है, हम जो एक ऑप्टिमल कवरेज अचीव करना चाहते हैं वो हमें हमेशा चैलेंज होती है कम्युनिटी लेवल के ऊपर, तो उनके लिए किस तरह से काउंसलिंग मटेरियल डेवलप होना चाहिए, उनको किस तरह से रागिब करें आप दोबारा से हिफाजती टीकों के हवाले से। तो ये एक चैलेंज था जो हम गवर्नमेंट के साथ मिलके EPI के लोगों के साथ मिलके CSOs सारी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काम कर रही है।
बहुत शुक्रिया। और मैं अब आप सबसे ये जो अभी बात हुई उसमें मजीद ज़ाहिर सवाल आते हैं तो, लेकिन पहले डॉक्टर नुसरत अब थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि आपकी जो NGO है उल्फत के नाम से, क्योंकि कोविड के दौरान सर्जरीज जो है कम हो गई तो क्या इस दौरान आप लोगों ने की जो जरूरी थी यानी इमरजेंसी की जो थी या बिल्कुल खत्म हो गई थी सर्जरीज मार्च के बाद से?
जो इमरजेंसी में करनी पड़ी हमें वो तो हमने की, अदरवाइज सारे लोग डरे हुए थे, हॉस्पिटल्स में भी रश कम था और हम लोग इनिशियली जब पीक था कोविड का तो हॉस्पिटल्स में भी खाली इमरजेंसी काम ही हो रहा था, इलेक्टिव काम नहीं हो रहा था, वो बच्चे जो इंतजार कर सकते थे फिर हमने उनको वेट कराया और अब हमने दोबारा शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हो रहे हैं ऑपरेट।
तो जाहिर है कि एक बहुत ही अहम इदारा है आपका ये गैर सरकारी, तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे शुरू कैसे हुआ। आप फाउंडिंग मेंबर हैं आप और डॉक्टर अली दोनों, उनसे अभी मैं बात करती हूँ, लेकिन पहले आप बताइए कि ख्याल कैसे आया और फिर फंडिंग वगैरह कहाँ से मिलती है आपको।
राइट, तो ये ख्याल अल्लाह की तरफ से आया, हमने ना सोचा था ना कोई प्लान किया था। वन ऑफ माई को फाउंडिंग मेंबर वॉज पोस्टेड इन स्वात और उनके पास एक बच्चा था जो कि एक सिविलियन ड्राइवर का बच्चा था, 3 साल, 3.5 साल का। उन्होंने फोन किया और कहा कि जी ये बच्चा है, बाप रो रहा है कि इसका इलाज नहीं हो सकता, पता चला दिल में सुराख है। तो फिर एक ही में पता किया, उस वक्त काफी सारे पैसे लगते थे, 50% डिस्काउंट मिला। मैंने 5 दोस्तों को, उस वक्त तो पैसे मांगने भी नहीं आते थे, अब तो हम काफी ट्रेन हो गए इस फील्ड में भी
जी।
तो 5 दोस्तों को मैसेज किया, आधे घंटे में पैसे जमा हो गए, वो बच्चा आया, इलाज कराया और चला गया। और हमने उसके बाद ये रियलाइज किया कि ये तो बड़ा आसान काम था कि किसी से पैसे ले लें और किसी का इलाज करा दें। 3-3.5 महीने हमने इस पर डिबेट किया और फिर हमने अपनी उल्फत बनाई। एक्चुअली उल्फत इज ULPHAT, स्टैंड फॉर यूनिफाइड लाइसेंस फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड एडवांस ट्रीटमेंट। सो इसको फिर हमने 2009 में रजिस्टर कराया। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो जितने कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सर्जिकल कंडीशन है हम उनका इलाज कराएं उन बच्चों का, बिकॉज एक तो माँ बाप को उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, फिर इलाज इतना महंगा होता है कि वो उनको पता चल भी जाए कि इलाज कराना है तो वो नहीं करा पाते। सो अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो गए और हम इसी मिशन के साथ चल रहे हैं कि कोई एक बच्चा भी पाकिस्तान में कॉम्प्लेक्स सर्जिकल डिजीज के साथ अनट्रीटेड नहीं रहना चाहिए।
तो कोई खास चैलेंज जो इस दौरान मार्च के बाद से जबकि कोविड जो है बहुत फैल गया तो उसके बाद से आपने खास तौर पे फेस किया हो सर्जिकल प्रोसेस में?
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। ये है कि जो बच्चे इलेक्टिव थे और माँ बाप इंतजार कर रहे थे उनको हमें थोड़ा सा इंतजार कराना पड़ा, मगर वो सब समझते हैं कि इंतजार करने में बेहतरी है, जब हॉस्पिटल खुलेगा और इलेक्टिव काम शुरू होंगे तो जाहिर है उनकी बारी भी आ जाएगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमें कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा। जहां तक फंडिंग की बात है तो हमारी पूरे पाकिस्तान में फ्रेंड्स हैं और अब चूंकि इतना लंबा अरसा हो गया ये काम करते हुए तो रमजान से एक महीने पहले से मैसेजेस हम करना शुरू कर देते हैं और फ्रेंड्स एंड फैमिली ही हमारे मेजर डोनर्स हैं।
अच्छा, अब डॉक्टर अली फैसल, क्योंकि आप बच्चों की बीमारियों के बाहर हैं और एक ऐसे हॉस्पिटल में है जो एक नुमाया उसका मकाम है, तो आप थोड़ा सा बताइए चैलेंजेस के बारे में कि क्या आपको नजर आते हैं कि कोविड ने क्या चैलेंज पैदा किए हैं। क्योंकि देखिए जो चंद महीने में नुकसान हुआ है वो नुकसान तो चंद महीने में हुआ है लेकिन उसे पूरा करने में बरसों शायद लग जाएंगे, तो सबसे ज्यादा जो है संगीन चीज आपको क्या नजर आती है आने वाले दिनों में?
जो मुख्तलिफ औकात में हमारे पास चैलेंजेस रहे हैं वो बच्चे हैं जिनकी कुछ अद्वियात चलती रही हैं, जैसा कि वो बच्चे जिनको एस्थमा है या वो बच्चे जिनको ट्यूबरक्लोसिस है या वो बच्चे जिनको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, जिनकी दवाइयां मुस्तकिल और लंबे अरसे के लिए चलती हैं और मुस्तकिल चलती रहती हैं। जब कोविड का सिनेरियो आया तो वो बच्चे अपने जो रेगुलर फिजिशियन है उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, उसकी वजह ये थी कि एक स्मार्ट लॉकडाउन का इस्तेमाल किया हुआ था, कुछ मखसूस अस्पताल काम कर रहे थे, कुछ मखसूस फार्मेसी काम कर रही थी, लेकिन बहुत से गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटेट किया, ऐसे इदारों के साथ मिलकर काम किया कि जो है किसी तरीके से दवाइयां पहुंचा सके ऐसे मरीजों को या उनको फैसिलिटेट किया जा सके। सो पहला तो मसला उन मरीजों के साथ आया और उनके वालदैन के साथ आया। दूसरा जो है वो कम्यूट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जैसे कि अगर हमारे मरीज कराची में दूर मकाम पे रहते हैं या कराची से बाहर रहते हैं और वो कराची में आके हमें दिखाते हैं तो वो जो कम्यूट का प्रॉब्लम है वो एक दूसरा बड़ा चैलेंज था। उसका अंदाजा हमने इस तरह लगाया कि हम उनको टेली क्लिनिक स्टार्ट कर दी, हमने उनको व्हाट्सएप क्लिनिक स्टार्ट कर दी, वीडियो कॉल पे ले लिया, लेकिन अपेरेंटली आपको पता है कि जो वालदैन है जब तक वो अपने मालिज को अपने बच्चे को नहीं दिखाए तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहती, और मालिश पर भी जब तक बच्चे को हाथ नहीं लगाए, प्यार नहीं करे और उसको एग्जामिन नहीं करे उसके पास भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहती। तो वो एक पेचीदगी का मसला था जो कि शुरू के 4 महीने में तो बहुत ज्यादा रहा, और जैसे ही स्मार्ट लॉकडाउन खत्म हुआ थोड़ा सा फीजिबिलिटी मिली, रिलैक्सेशन मिली, लोगों ने फौरन से आने के बाद अस्पतालों का रुख किया, और अगर अब देखें तो अस्पताल हमारा जो है उसमें क्लिनिक के जो औकात हैं हम बड़ी बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रहे हैं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर दूर रखने में। तीसरा जो बड़ा चैलेंज मुझे लगता है वो इस जमाने में रहा गवर्नमेंट के लेवल पे और प्राइवेट सेक्टर के लेवल पे बच्चों को और फैमिलीज को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की हिदायत करने का रहा, हैंड वॉशिंग का रहा, लेकिन मुझे लगता है कि किसी हद तक हम कामयाब रहे लेकिन बहुत हद तक जो है हम उसमें मुकम्मल कामयाब नहीं हो सके और वही इम्पैक्ट जो है आता रहा अब उन बीमारियों के साथ जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा। जो वो है इम्यूनाइजेशन का वो वैक्सीन जो कि अभी अभी जो है जो बच्चों को नहीं लगी, जैसे कि खसरे की वैक्सीन, आपको पता है खसरे की अगर वैक्सीन नहीं लगे बच्चों के अंदर आप प्रोटेक्टिव नहीं होते, ना सिर्फ ये बल्कि कम्युनिटी में बहुत ज्यादा यानी 100 में से अगर 95 बच्चों को खसरे की वैक्सीन लगे तो वो बाकी 5 बच्चे प्रोटेक्टेड हो गए वरना प्रोटेक्शन नहीं आती। तो एक बहुत बड़ा मसला जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो सकता है हमारे पास, अल्लाह हमें आसानी करे इसके अंदर, वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस जो कि रिवर्स हो सकती है जिसमें डिफ्थेरिया है यानी कि खतरनाक है, काली खांसी है, खसरा है और तपेदिक टीबी जिसका खास तौर पे लोग क्योंकि घरों में रहे हैं एक्सपोजर ज्यादा घरों के अंदर रहा है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है।
डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख साहब, आपका इदारा जो है वो इस लिहाज से बहुत ही अहम है कि पूरे पाकिस्तान से आप मरीजों को लेते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान के अलावा करीबी जो मुल्क है अफगानिस्तान वहां से भी मरीज आपके पास आते हैं। तो ये जो कम्यूटिंग की बात की डॉक्टर अली ने, तो आप ने जो ये सैटेलाइट सेंटर्स, अब मैं चाहूंगी कि उसके बारे में आप हमें बताएं और किस तरह आपने जोड़ा मरीजों को जो दूर दराज इलाकों में है ताकि वो भी इस्तेफादा कर सकें आपके अस्पताल की सर्विसेज से।
उसके लिए ये है कि 2017 से पहले सिर्फ हमारे पास एनएसयूडी कराची में था और हम विजिट पे गए हुए थे लाड़काना की तरफ, तो वहां पे फर्स्ट टाइम जो हमने देखा कि वहां पे बहुत सारे पेशेंट थे और इतने पेशेंट थे जो कि अनडायग्नोज थे या फर्स्ट टाइम आ रहे थे, दूसरे सेंटर्स थे दूसरी सिटीज थे वहां भी जैसे बहुत सारे पेशेंट थे लोकल लेवल पे ट्रीट हो रहे थे जो जाहिर है वहां पे स्पेशलाइज सेंटर्स नहीं थे तो मिसमैनेज भी हो रहे थे, कॉम्प्लिकेशन भी हो रही थी जब तक वो टर्शरी केयर या मेन सिटी तक पहुंचते। तो उसमें ये था कि वहां का हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया तो पता चला कि वो पेशेंट जिनको प्राइमरी केयर चाहिए जिनको इमरजेंसी की सूरत में ब्रीच करना होता है टर्शरी केयर तक वो नहीं कर पा रहे थे और मॉर्टलिटी बहुत ज्यादा हो रही थी, स्पेशली वो जो बच्चे होते हैं जो न्यू बॉर्न होते हैं, सस्पिशन होता है कि ये बच्चा दिल का मरीज है और सीरियस टाइप ऑफ बर्थ है जिसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी और कोई ना कोई मॉर्टलिटी और मॉर्बिडिटी होगी, तो उन बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा था और वो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इसमें ये हुआ कि हमारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से उन्होंने आपस में डिसाइड करके गवर्नमेंट से हेल्प लेके सबसे पहले एक सेंटर लाकर हमें स्टार्ट किया कि हम ट्रायल बेस पे देख लेते हैं कि क्या है। जब हमने स्टार्ट किया 2017 में तो वहां पे बड़े होते हैं उनको तो फायदा हो रहा था कि कोई हार्ट अटैक की सूरत में विद इन 90 मिनट्स पहुंचना होता है तो आउटकम बेहतर होता है, 90 मिनट्स के बाद अगर पहुंचे तो कॉम्प्लिकेशन होती है आउटकम पूर होता है, उनको तो फायदा हो रहा था 100%। जो उससे ज्यादा फायदा हुआ वो उनको हुआ जो हम लोगों ने देखा कि वहां पे जो बच्चे आ रहे थे वो आ रहे थे जो 80-90% जिन्होंने कभी दिखाया ही नहीं था, जिनको पता ही नहीं था कि दिल का मर्ज तो है कौन से किस्म का है, बस ये कि उनको फिजिशियन ने ऑस्कल्टेशन में सुन के महसूस करके बताया था आपके बच्चे को दिल का मसला लगता है मगर वर्कअप नहीं हुआ था, पता नहीं था, वो ऐसे ही सालों के सालों कोई 10 साल का बच्चा था कोई 15 साल का, तो हमारे पास 80-90% जब न्यू बच्चे थे जो फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुए उसमें 25% के करीब वो थे जो अपना समझे टाइम निकाल चुके थे, जिनको उस टाइम पे जब प्रेजेंट किया तो समझ नहीं कर सकते थे, ऑलरेडी उनकी कॉम्प्लिकेशन समझे कि एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर चुकी थी, तो वो 25% ऐसे थे जिनको हम बचा सकते थे अगर वो टाइम से आ जाते हमारे पास। वहां पे पेशेंट शुरू किए तो हमें पता चला कि इंटीरियर में हर सिटीज में इस तरह के बहुत सारे पेशेंट है थाउजेंड्स की तादाद में, क्योंकि पाकिस्तान में समझे कि हमारे पास 50-60,000 बेबीज बॉर्न होते हैं हर साल दिल के मर्ज के साथ, तो हर साल वो समझे कि जमा होते जा रहे थे, तो एक सेंटर के बेसिस पे हम लोगों ने फिर देखा कि नहीं इस तरह के सेंटर्स बाकी सिटीज में होना चाहिए, उस पर एक सीधी बात है एक पर्सनल एफर्ट्स भी होती है एक गवर्नमेंट लेवल पे भी एफर्ट्स होती है, इसको हम लोगों ने अपना डेटा प्रेजेंट किया उनको जो ट्रीटमेंट दी थी पेशेंट को उसका आउटकम प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा कि जो ड्रास्टिक फर्क है ये इतना पेशेंट में डिफरेंस आ रहा है कि वो समझे कि हम लोग जो मॉर्टलिटी है अगर नॉर्मली हम समझे कि जो पेशेंट नहीं पहुंच पा रहा उसमें अगर 30-40% है तो उसको कम करके 2-3% पे लेके आए थे विद इन 90 मिनट्स या विद इन जो न्यू बॉर्न बेबीज थे वो हमारे पास आ रहे थे उनको हम इको करके अर्ली मैनेजमेंट कर देते थे उसके बाद फिर हम अपने टर्शरी सेंटर में रेफर करते थे सर्जरी के लिए। मॉडल सेंटर जो लांकना में स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने सखर, फिर खेरपुर, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मिट्टी, नवाबशाह बना लिए। उस 10 सेंटर्स के बेसिस पे आप समझे कि जैसे हमारे कराची सेंटर की कैपेसिटी है 1500 to 2000 पर मंथ हम बच्चे देख पाते हैं, उनका इको या सब चीजें कर पाते हैं, उसमें से तकरीबन समझे कि हम पर मंथ के हिसाब से 50 to 60 सर्जरीज कर रहे थे उन बच्चों की जिनको जरूरत थी। मगर जब वो सेंटर्स डेवलप हुए तो उन सेंटर्स पे जो हमारी कैपेसिटी हो गई समझे कि 4 times ज्यादा हो गई। वहां पे हम 7 to 8 thousand पर मंथ के हिसाब से बच्चे जो दिल के मर्ज से अमराज के साथ थे उनको देख रहे थे, उनका पूरा वर्कअप भी कर रहे थे। और उसमें से हमारे पास 3 ऐसे सेंटर्स थे जिस सखर वहां पे प्रॉपर हॉस्पिटल हम लोगों ने बना लिया, जिस तरह कराची में एनआईसीयू का फुल फ्लेज हॉस्पिटल है, इंक्लूडिंग वहां पे सर्जरीज, इंटरवेंशन, एंजियोप्लास्टीज और सब चीजें स्टार्ट कर दी। इस तरह टंडो मोहम्मद खान में भी इसी तरह हॉस्पिटल बनाया, हैदराबाद में बनाया और बाकी शहर में भी छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाए। तो ओवरऑल हम लोगों ने ऐसे किया, पाकिस्तान में 50,000 न्यू बॉर्न्स पैदा होते हैं दिल के मर्ज के साथ। तो हमारे जो सेटेलाइट सेंटर जब डेवलप हुए टोटल, तो उसमें हम लोगों की अब कैपेसिटी है 70 to 80 thousand पर ईयर अब हम बच्चे देख लेते हैं डिफरेंट सेंटर्स में। इसका मतलब है कि हम 50,000 अगर पूरे पाकिस्तान के फॉर एग्जाम्पल बच्चे हमारे पास आ भी जाते हैं ना, उसके अलावा भी हम 20-30 thousand देख सकते हैं। मगर जाहिर है हर सेंटर पे सर्जरी की फैसिलिटीज नहीं है, एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटीज नहीं है। इसमें हम लोगों ने फिलहाल ये किया कि जितने भी सेंटर्स सिटीज है सिंध में वहां तो सेंटर्स बन गए हैं, उसके अलावा जो छोटे छोटे गांव है वहां पे हम लोगों ने यूनिट्स बनाए। एक समझे कंटेनर पे एक फुल फ्लेज जैसे क्लिनिक्स होती है, इमरजेंसी मैनेजमेंट की सब चीजें होती है, ताकि जो भी करीबी कोई भी पेशेंट हो जो विद इन 30-40 मिनट्स में वहां रीच कर पाए, वहां पहुंचता है, उसको हम असेस करके देख लेते हैं कि वाकई इसको अगर जरूरत है तो हम नियर बाय जो भी सेंटर होता है सेटर सेंटर या छोटा हॉस्पिटल या बड़ा हॉस्पिटल वहां पे हम पहुंचा देते हैं। और बलोचिस्तान है वहां पे ऐसे कोई सेटअप नहीं है, तो वहां के तकरीबन सब पेशेंट जो है स्पेशली बच्चे वो हमारे पास आते हैं। जैसे नियर बाय सेंटर उनको पड़ता है सखर, तो सखर हमारे लोअर पंजाब के तकरीबन पेशेंट वहां पे आ जाते हैं, बलोचिस्तान के आ जाते हैं। उसके अलावा केपी के और आउट ऑफ बॉर्डर्स भी जो पेशेंट होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि और उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं।
अब चलते हैं यासिर शफीक साहब के पास। यासिर साहब, आपसे खासतौर पर मैं, क्योंकि हेल्थ पॉलिसी आपका सब्जेक्ट है, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी सतह से ज्यादा जो एनजीओज हैं उनकी वजह से हेल्थ सिस्टम जो है काम कर रहा है कराची में खासतौर से।
ये ख्याल आपका कुछ हद तक सही है और मैं इसमें जो CSOs हैं या NGOs हैं ये जो हैं बिल्कुल डीप रूटेड एरियाज के अंदर काम कर रहे होते हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर गली कूचों में काम कर रहे होते हैं, तो उनकी कम्युनिटी की जो रीच है वो बहुत अच्छी होती है और इस चीज को जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर भी रहे हैं और ज्यादा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि इन एनजीओस को, इन CSOs को बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होता है कि कम्युनिटी जो है वो किस तरीके की है। जितनी भी CSOs हैं उनकी एक अच्छी स्ट्रेंथ ये होती है कि वो जब भी काम करते हैं किसी भी इलाके के अंदर, डिपेंडिंग ऑन के उनका नेचर ऑफ वर्क क्या है, वो वहां के लोकल्स को हायर करते हैं, तो जो उनके पास जितनी अच्छी नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर एरिया की, सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और सोशल जो डिटरमिनेंट्स होते हैं उनके हवाले से, वो मेरे ख्याल से और शायद किसी इदारे के पास मुमकिन नहीं है। तो आपने सही कहा कि कराची में और स्पेशली पाकिस्तान में भी अगर आप ओवरऑल देखें तो CSOs और NGOs का बहुत अच्छा रोल है, रोल रहा है और होगा इन फ्यूचर भी। जितनी भी ये इदारे हैं ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनको सपोर्ट करते हैं और एक एडिड वैल्यू है इनकी।
अच्छा, अभी जैसे सत्तार शेख साहब बात कर रहे थे, उसे ये अंदाजा हुआ कि जो छोटे कस्बे गांव जो है उनमें जाहिर है कि एनजीओज उस तरह मौजूद नहीं है और सरकारी सहूलतों का बेफुकतान है, तो अभी आप ही के सेक्टर की बात करूंगी कि जो CSOs हैं, तो क्या आप लोग उन इलाकों में जो दूर अफ्तादा है जैसे नॉर्दर्न एरियाज हैं, कबायली इलाके हैं, तो वहां पर आप लोगों का क्या किरदार है?
तो बहुत सारी जो CSO के NGOs जिनको आप कहते हैं, अगर आप उनकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो बहुत वाइडली स्प्रेड है और मेजॉरिटी का जो एम है वो डेफिनेटली या तो अर्बन स्लम्स हैं जहां पे हेल्थ इंडिकेटर्स जो हैं वो वर्स हैं इवन कंपेयर टू रूरल एरियाज, या तो वो किसी रूरल एरियाज के अंदर काम कर रही है या वो जो बिल्कुल नॉर्मिक पॉपुलेशन होती है जो कि आज इधर हैं लोग, कम्युनिटी कल किसी और जगह पे मूव कर गई, तो बहुत स्प्रेड है सीएसओस की जो रेंज है वर्किंग की, और आई मस्ट से के सीएसओ जो है वो इन इलाकों के अंदर बहुत वाइडली काम कर रही हैं, और वहां के एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी काम कर रही हैं, हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रही हैं और सोशल सेक्टर में भी काम कर रही हैं।
अच्छा डॉक्टर नुसरत फारूकी, अब आप थोड़ा सा बताइए कि जो सर्जरीज होती हैं, उल्फत करवाता है जिन सर्जरीज को, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां हैं, मतलब किन अमराज के लिए वो सर्जरी होती है बच्चों में?
देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा कॉमन या जो सबसे ज्यादा तनासुब है वो है दिल के मसलों का, दिल में सुराख जो पैदाइशी तौर पर बच्चों के होते हैं। और जैसे डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख ने कहा कि इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं जिनको ये बीमारियां लाहक हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बच्चों में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उसके अलावा फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मैलफॉर्मेशन, तालू का ना जुड़ना या यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो, अपेंडिक्स हर्निया नहीं, वो तो आसान सी चीजें वो हो जाती हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हैं उनको हम बेसिकली कैटर करते हैं।
मैं बस यहाँ पे डॉक्टर नुसरत की बात एक ऐड करूंगा कि बच्चों की जो दिल की सर्जरीज है वो दो किस्म की होती हैं। एक होती है वो बच्चे जो कि नीले पैदा होते हैं, एक होती है वो बच्चे जो कि पिंक पैदा होते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं वो यूजी उन बच्चों की होती है जो कि नीले पैदा होते हैं, क्योंकि उनको अर्ली सर्जरी की जरूरत होती है, उनकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है और कभी कभी उनको एक प्रोसीजर नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोसीजर्स की जरूरत होती है। बल्कि ऐसे बच्चों की सर्जरीज के अंदर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बहुत होते हैं, यानी कि हार्ट का एकदम कम या ज्यादा तेज चलना या हार्ट का ब्लॉक होना, ये इनकी सर्जिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ ऑपरेशन में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। डॉक्टर सत्तार ने बहुत अच्छी बात की थी और वो ये कहा था कि 50,000 से 60,000 बच्चे इस मुल्क में दिल के अमराज का पैदा होते हैं, लेकिन अगर इसको इस हिसाब से देखा जाए कि क्या वो सारे के सारे बच्चे केटर हो सकते हैं, कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कितने सेंटर हैं, बलूचिस्तान में कितने सेंटर्स हैं, पिशावर में कितने सेंटर्स हैं, तो अगर आप देखें तो मेनली ये सेंटर्स बड़े बड़े सिटीज के अंदर हैं जहाँ पे ऐसे फास्ट लॉन्ग एरिया कम्यूट का
बिल्कुल।
दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि हम सिर्फ ऑपरेशन कराने के बाद खुदाफिश नहीं कहते अपने बच्चों को।
अच्छा,
तो जो पहला बच्चा था हमारा, हम आज भी उससे कॉन्टेक्ट में है और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जितने भी हैं ये ठीक होके स्कूल जाएं, पढ़ें लिखें और फिर एक मस्बत कंट्रीब्यूशन दें अपना सोसाइटी की तरफ। सो माँ बाप से हमारा कांटेक्ट रहता है और अगर कभी साल दो साल के बाद उनको किसी और ऑपरेशन की जरूरत हो या उसी में कोई एनहांसमेंट करने की जरूरत हो तो हम उनको इस बात पे भी फैसिलिटेट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक दफा ऑपरेशन कराने के बाद हम बच्चे को भूल जाते हैं। तो जो पहला बच्चा था हम आज भी उससे कांटेक्ट में हैं और वो उसका सारा जो एजुकेशनल फॉलोअप है हम वो भी उनसे लेते हैं। सो वो बच्चे जो एक दफा एक्सपोज होते हैं, जैसे 2010 में जो सैलाब आया था उसमें जब हमने काम किया तो हमें 6 cousins थे आपस में बच्चे, उन सबके दिल में सुराख था और ये सुजावल ठट्टा सुजावल बाईपास पे टेंट सिटी बनी थी पाकिस्तान नेवी की, वहां पे हमने इन बच्चों को पिक किया था। आज भी जब हम उन बच्चों को बाकी बच्चों के दरमियान देखते हैं तो चूंकि वो एक्सपोज हुए थे शहर से और सफाई सुथराई के हवाले से, तो वो बच्चे दूर से नजर आते हैं कि वो साफ सुथरे भी होते हैं, उनकी पर्सनल हाइजीन भी बेहतर होती है। सो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा बच्चों के साथ, जब एक दफा ताल्लुक बन जाता है तो फिर हम उनको साथ साथ लेके चलते हैं।
तो वो बच्चा कितना बड़ा है? जो पहला बच्चा था
13 साल का हो गया।
अच्छा, और पढ़ता है?
जी बिल्कुल, स्कूल जाता है।
अच्छा,
पढ़ता है।
तो डॉक्टर सत्तार, अब आपकी तरफ मैं आती हूँ और आपका सरकारी अस्पताल है, आमतौर से लोग बात करते हैं, जाहिर है कि आपको पता है कि मीडिया को बहुत से लोग खत भी लिखते हैं, अपनी कहानियां भी सुनाते हैं, तो ये मुझे अंदाजा होता है कि गो के अस्पताल सरकारी है और जाहिर है कि वहाँ तमाम चीजें मुफ्त होनी चाहिए, लेकिन जब मरीज वहाँ जाते हैं तो उन्हें दवाएं वगैरह खुद खरीद के लानी होती हैं। तो चलिए, बहुत से लोग तो इस्तेआत रखते हैं, लेकिन मैंने देखा है सिविल अस्पताल के बाहर पूरे पाकिस्तान में लोग बड़े होते हैं बाहर अपने बिस्तर डाले हुए, जाहिर है कि उनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो किसी गांव से आए होते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि फिर वो लोग अपनी दवाओं वगैरह का, जबकि दवाएं खासी महंगी हैं, खासतौर पर दिल से मुतालिक जो दवाएं हैं, मतलब क्या सरकारी तौर पर दवाएं नहीं दी जाती लोगों को?
NICU में ये पेटर्न नहीं है। NICU में ये होता है कि जो भी पेशेंट आता है उसको हम मेडिसिन हम फ्री में देते हैं, चाहे वो इंजेक्शन हो, टेबलेट्स हो या कोई भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो, उसमें हम कभी भी पेशेंट को लिख के नहीं दे सकते ये अलोएड नहीं है NICU के किसी भी सेंटर में। ये समझे कि हमारे सेटअप में और बाकी गवर्नमेंट सेटअप में ये डिफरेंस है कि जहां पे हमें किसी किस्म की परमिशन नहीं है कि आप पेशेंट से कोई चीज आउटसाइड से मंगवाएं, उनको भी कहा होता है स्टार्टिंग में जब एडमिशन होती है कि आपने किसी को ना पैसे देने हैं, ना कोई आपने मेडिसिन के लिए पैसे देने हैं, ना प्रोसीजर के लिए पैसे देने हैं। इसके लिए पूरी फंडिंग हमें गवर्नमेंट करती है और वो उस हिसाब से हम ईयरली उनके पास अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं कि ये एक्सपेंडिचर हुए थे, उस हिसाब से हम जैसे एक्सपेंड करते जाते हैं तो ईयरली रिवाइज होता है। तो हमारे जितने भी सेंटर्स है, जितनी भी ब्रांचेस है, ये हॉस्पिटल का काम है कि मेडिसिन अरेंज करे। अगर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कोई मेडिसिन हम लोग खुद डॉक्टर्स मंगवाते भी हैं तो वो पेशेंट को रिफंड करवाते हैं पैसे। उसके अलावा जहाँ पे कोई भी प्रोसीजर हो, चाहे इंटरवेंशन हो, सर्जरी हो, एंजियोप्लास्टी हो, फिर आपका सीटी स्कैन हो, या पेसमेकर लगे, या फिर एक आर्टिफिशियल जैसे हम लोग ने हर्ट लगाए हैं, तो वो समझे करोड़ों में उनकी चार्जेस होती है, मगर फिर आपका उसके अलावा उनका फॉलोअप का प्रोग्राम हम लोग ने इस तरह रखा है कि फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट हमारे पास सखर से आया, उसकी सर्जरी यहाँ पे, तो वो बाद में जाकर सखर में फॉलोअप कराएगा एनआईसीडी ब्रांच में, ताकि उसको यहाँ तक बार बार आना ना पड़े। कम से कम 5 to 10 years का फॉलोअप होता है हमारे पास। ईयर बाय जो भी सेंटर से उनको हम लोगों ने कहा हुआ है कि आप फौरन बच्चा बॉर्न हो, आपको अगर लगता है कि बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ब्लू हो रहा है, दिल बहुत बड़ा हुआ है, तो हम फौरन कम से कम उस हॉस्पिटल तक लेके आए, हम देख लेंगे। अगर कार्डिक पेशेंट होगा तो अपने पास रखेंगे, अगर नहीं कार्डिक नहीं है तो फिर आप अपने पास रखिएगा। वो कोई सर्जरी होगी तो वो हम उस सर्जरी या कोई इंटरवेंशन जो भी प्रोसीजर होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो पहले अवेयरनेस नहीं थी तो रेफर नहीं होता था, या लोगों को पता नहीं था कि कौन से पेशेंट को हम भेजें, स्पेशली बॉन्स पेशेंट के लिए जो डेली वेजेस पे फैमिली है, वो खुद भी निकले, जाहिर वाइफ निकलेगी, 2-3 बच्चे हैं वो भी निकलेंगे, जहाँ आएंगे जहाँ अरेंजमेंट हो, तो वो बहुत नॉन कम्प्लायंट होते थे, ज्यादातर बच्चे वहीं निकलेक्ट हो जाते थे उस वजह से, और समझे कि बहुत कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती थी। जब एनजीओ ने देखा कि नहीं हमें अवेयरनेस करनी है, तो वो उन्हें लोकल जीपीज के साथ, दूसरे डॉक्टर्स के साथ या पैरामेडिक के साथ मिलके अवेयरनेस बहुत इंट्रोड्यूस करवाई है। उससे ज्यादा जो मेन चीज है वो है मदर, क्योंकि ये कंजनेटल हार्ट डिजीज होती है, बच्चों के सुराख होते हैं या जो बीमारियां होती है उसमें मदर की न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, उनका चेकअप, जहाँ उनका अल्ट्रासाउंड और उनकी जो मेडिकेशन है उसका बहुत रोल है। अगर मदर हेल्थी नहीं होती, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होती, वैक्सीनेशन नहीं होती या इन्फेक्शन होता है, तो ये भी एक मेन समझे के सबब है बच्चों में दिल की बीमारियों का। स्लो प्रोग्रेस भी हम डेवलप करें, वही करें कि जिस फैमिली में एक या दो बच्चे पहले से हैं जिनको दिल की बीमारियां हैं, तो उन माओं को हम रजिस्टर करते हैं, कहते हैं कि अपनी न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, फॉलोअप, इवन बच्चा पेट के अंदर होता है उसका वहीं पर इकोकार्डियोग्राफी हो जाता है कि देखने के लिए कि उसके अंदर ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, जिसको हम फौरन उनको मदर को कहें कि नहीं आप ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में या रिमोट एरिया में रहते हैं तो आप करीबी आकर सेंटर में आकर डिलीवरी करें।
ज़ाहिरी तमाम प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं और कई दफा लोगों को पता ही नहीं होता कि इस तरह की चीजें मौजूद भी हैं जिससे उनको मदद मिल सकती है या वो जा सकते हैं। कॉन्टेक्ट का क्या तरीका है सबसे अच्छा, किस तरह लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं?
जिसमें भी पीडियाट्रिक कम्युनिटीज है, जिसमें पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, तो उनके साथ हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। दूसरा है कि जो भी सेंटर से जिस सिटी में, जैसे फॉर एग्जांपल सखर में हमारा मेन सिटी है, तो सखर के जितने भी हॉस्पिटल से, जितने पीडियाट्रिशियन है या जीपीज है, उनके साथ हम मिलते रहते हैं, जहाँ जूम प्रोग्राम रखते हैं उनको इन्वाइट भी करते हैं कि आप आ जाए। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट ट्रेन करके उसी सिटी में, उनके अपने सिटीज में ही उनको ट्रेन करके रखा है एज अ कंसल्टेंट करके, ताकि वो वहीं लोकल एरिया में सर्व करें, उनको पता होता है कि हमें कहाँ पे ज्यादा एड्रेस करना है। तो आजकल हम लोग इस पे वर्कआउट कर रहे हैं कि जितने भी पीडियाट्रिशियन है उनको हम अपने प्रोग्राम्स में लेके आए, उनको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन करें, जो कि हमारे पास माशाल्लाह जी समझे कि 15 के करीब पीडियाट्रिशियन करंटली ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेन हो रहे हैं। 10 के करीब ट्रेन होके एज अ कंसल्टेंट डिफरेंट सिटीज में चले गए हैं, जो काम शुरू कर दिया है, और 40 के करीब ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएट है वो हमारे पास काम कर रहे हैं।
लेकिन इमरजेंसी की सूरत में कोई ऐसा टेलीफोन नंबर है जिसपे वो कॉन्टेक्ट कर सके?
जी बिल्कुल, जितने भी सेंटर पे सबका हॉटलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, जो इवन लोकल ऑपरेटर होता है उसके पास भी होता है, जो पीटी सेल का ऑपरेटर उसको भी बताता है कि सेंटर सेंटर एनआईसीयूडी सखर है, उसका नंबर वो मिला के दे देगा। उसके अलावा ऑनलाइन हम लोगों ने जो वेबसाइट रखी है, वेब पेजेस है, फेसबुक है, ट्विटर अकाउंट है, सबके थ्रू डेली बेसिस पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं।
جب دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گی تو میں چاہوں گی, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو زبانی تو یاد نہیں ہوں گے, لیکن اگر کوئی ایسے فون نمبر ہیں جو آپ بتانا چاہیں جس پر کراچی کے باہر کے لوگ بھی رابطہ کر سکیں, کراچی کے علاوہ. ہمارا پروگرام بہت لوگ سنتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں سے کال ان شوز ہوتے تھے. کووڈ کا ہم پہ ہی اثر پڑا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں تو ہمارے کال ان شوز ختم ہو گئے. تو آپ کے پاس ایک تانتا بنا ہوتا تھا کیونکہ لوگوں کو اتنی ضرورت ہے میرا خیال ہے ہیلتھ کی سروسز کی کہ وہ بےچارے انتظار کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ملے اور وہ مدد کے لیے پوچھ سکیں کچھ بھی. تو اب ہم چلتے ہیں یاسر صاحب کے پاس, ہم لوگ کوئی ڈسکشن کراتے ہیں. تو ظاہر ہے جو لوگ آتے ہیں ماہرین تو وہ ہم انہی کو لاتے ہیں جن کا ایک پیشن ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پیشن آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہو. تو ظاہر ہے کہ بہت سی غفلت بھی ہے اور لوگوں کو بہت سی شکایتیں بھی ہیں, مالی وسائل جن کے نہیں ہیں, کئی دفعہ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا. جیسے مجھے پتا ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کی دوائیں بہت مہنگی ہیں مگر وہ مفت لے سکتے ہیں, گو کہ انہیں اس کے لیے بڑے شہروں میں آنا پڑتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح لوگوں کو کس طرح یہ بتایا جائے.
ٹرولی میں ہمارے بھی ایکسپیرینس میں یہ ہوا ہے کہ جو صحت کی سہولتوں کے بارے میں جو لیک آف آگاہی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. میں جسٹ آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وائٹل پاکستان نے آغا خان کے ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس کے ساتھ مل کے اس وقت تقریباً 300 بچے ایسے ہیں جن کو موروثی بیماری تھی دل کی, یہ کراچی کے اربن سلمز, مختلف اربن سلمز میں ہم نے ان کا علاج کروایا اور ان میں سے تقریباً 200 کے قریب بچے ایسے تھے جن کی سرجریز ہوئی ہیں آغا خان ہاسپٹل میں اور ماں باپ کو ایک روپیہ بھی نہیں خرچ کرنا پڑا. اور وہ ہم نے اس طریقے سے کیا کہ کچھ پیسے جو ہیں وہ ان کو ویلفیئر سے ملے, کچھ اگر وہ زکات ایلیجیبل تھے ایک خاص کرائیٹیریا پہ اس پہ وہ فال کرتے ہیں تو ان کو ہم نے اس کے تھرو علاج کروایا, اور جہاں پہ وہ کسی بھی کرائیٹیریا پہ فال نہیں کر رہے تھے وائٹل پاکستان نے ان کے بہاف پہ پے کیا ہے. تو یہ کی آگاہی ہے جو لوگوں کے پاس ہونی چاہیے کہ, اور ان کو ایک کی میسج جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, جو این جی اوز کام کر رہی ہیں, جو حکومتی ادارے کام کر رہے ہیں, ان کو کنیکٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں ان اداروں سے جہاں پہ یہ زبردست قسم کا علاج ہو رہا ہے, اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان صحت کی سہولیات کو استعمال کر کے اپنے بچوں کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. ہم لوگ اپنے لیول کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر وائٹل پاکستان تو ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر کلینکس کے اوپر, ان کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی خاص بیماری کے ساتھ کوئی بچہ آ رہا ہے یا کوئی حاملہ خاتون آ رہی ہے تو اس کو کہاں پہ ریفر کرنا چاہیے, کہاں پہ اس کا علاج جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے اور کوالٹی, ہائی کوالٹی علاج ہو سکتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارا فزیشین جو اس پرائمری ہیلتھ کے سینٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کمیونٹی کے اندر, وہ اس ساری اس نالج کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. پھر ہماری کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہیں جن کو ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے اس حوالے سے کہ اگر ان کو گھر کے لیول کے اوپر, ہاؤزر لیول پہ کوئی اگر بچہ کسی ڈینجر سائن کے ساتھ مل رہا ہے, اس میں کوئی بھی ایسی علامات ہے جس کی وجہ سے اس کو ڈاکٹر کا دیکھنا ضروری ہے, تو وہ اس ماں باپ کو آگاہی فراہم کرتے ہیں کہ اس بچے کو ادھر لے کے جانا چاہیے, ادھر سے اس کا علاج ہوگا, وہ آپ کو بہتر مشورہ دے سکیں گے, بجائے اس کے کہ اس کو گھر پہ رکھا جائے اور خدا نہ خاصہ اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو. جو لوگ اس پروگرام کے حوالے سے سن رہے ہیں ہمارا, ان کے لیے کی میسج ہے کہ ہمارا, ہم سب کا ایک فرض ہے کہ ہم اس طرح کے میسجز کو گراؤنڈ لیول کے اوپر پھیلائیں اور لوگوں کو آگاہی دیں کہ یہ علاج جو ہے مختلف اداروں میں میسر ہے.
بہت شکریہ. اور ڈاکٹر نصرت, اب آپ سے, کیونکہ کافی ہمارے پروگرام کا وقت کم ہی بچا ہے اب اس ڈسکشن کا, لیکن میں خاص طور پہ یہ جو کوسٹل ایریاز میں آپ کے کیمپ ہیں لگاتے ہیں آپ لوگ, اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیے, اور یہ کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران کس طرح کے کیمپ آپ لوگوں نے لگائے, اگر لگائے تو.
اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ وی آر لکی کہ ہم اس میں پارٹنرشپ ہے ہماری پاکستان نیوی کے ساتھ, اور پوری کوسٹل بیلٹ میں ہم کیمپ لگاتے ہیں, کیٹی بندر, شاہ بندر, جاتی, چورجمالی, پھر اس کے بعد یونس آباد, گڈانی, کنملیر, ارمارا, پسنی. تو پورے سال کا ہمارا روٹا بنتا ہے اور عموماً 10 سے 15 کیمپ ایک سال میں ہم کرتے ہیں. اس سال چونکہ کووڈ ہو گیا تو شروع میں ہم نے 3 کیمپ کیے تھے, پھر بیچ میں کووڈ کی وجہ سے ہمیں روکنا پڑا, اب ہم نے دوبارہ شروع کیا ہے. اور فی الحال چونکہ یہ اربن فلڈنگ ہوئی اور اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو کانسنٹریٹ کیا ہے ماروی گوٹ میں جو کہ قائد آباد میں مدینہ ٹاؤن کے اندر ہے, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन अर्बन फ्लडिंग की वजह से वहां हुई थी, और हमने अभी कोई एक महीना अभी पूरा नहीं हुआ है, 20 दिन में कोई 5 कैंप्स किए हैं। एवरी संडे हम हर इतवार के दिन हम वहां जा रहे हैं। फिलहाल तो टोटल 5 कैंप हम अभी तक कर चुके हैं। सो ये कंटिन्यूस मुस्तकिल एक हमारा प्रोग्राम है जो कि चलता रहता है। 2019 में हमने कोई 7-8 कैंप्स किए थे, 18 में हमने 15 कैंप्स किए थे। तो डिपेंडिंग के हालात कैसे हैं और सिचुएशन कैसे, नंबर ऑफ कैंप्स ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक मुस्तकिल काम है जो कि हम कर रहे हैं।
अच्छा, तो इससे पहले कि डॉक्टर अली से मैं कहूँ कंक्लूड करने को क्विकली, डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख साहब, अगर नंबर कोई हो कॉन्टेक्ट का और आप बताना चाहें लोगों को।
नंबर है
02199-21-7125। बहुत शुक्रिया, और मुझे यकीन है कि लोग बहुत फोन करेंगे आपको, और जिस तरह की मुफीद मालूमात आपने दी। डॉक्टर अली फैसल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कई दफा जब मैं डॉक्टर से कहती हूँ या किसी एनजीओ से, वो वेबसाइट का बताते हैं, और वो बहुत ही मौकर एनजीओ है, ऐसी नहीं, और मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ मगर वेबसाइट, कितने लोग जा सकते हैं वेबसाइट तक, ये भी तो बात है ना कि लोगों की रसाई, जिस आदमी को जरूरत है उसकी रसाई तो बहुत कम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सेल फोन पाकिस्तान में बेतहाशा है, तो इस तरह के मैसेजेस सेल फोन पर बाकायदा, यानी जो पब्लिक सर्विस के ऐलानात हैं वो सेल फोन पर आप लोग भेजा करें, और इसके अलावा और भी आज हमने जो भी बातें की, अगर आप कंक्लूड करें उनको।
पहले डॉक्टर साहब, अगर आप भी उल्फत का फोन नंबर बता दें, हम शेयर कर दें तो प्लीज।
वैसे तो मैं अपना फोन नंबर ही दिया करती हूँ, हमारा अलग से हमने कोई उल्फत का फोन नंबर अभी नहीं है। आप नोट करना चाहें तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं
जी।
मेरा नंबर है 0300-236-2551-2551।
वैसे मैं अपने सुनने वालों से ये भी कहूंगी, मुझे पूरा यकीन है आप लोग नोट कर रहे होंगे नंबर, लेकिन प्लीज आपको ये तो बताना है कि डॉक्टर्स को भी सोने का हक होता है, तो थोड़ा सा आप लोग जब कांटेक्ट करें जो भी नंबर आपको दिए गए, खासतौर पे ये जो पर्सनल नंबर है, तो डॉक्टर नुजहत को रात को मत जगाइएगा और दिन में उनको फोन करके पूछिएगा जी। डॉक्टर अली, अब आपके तरफ।
मेरे 4-5 इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। पहला मैसेज तो ये है कि जिन लोगों की, बच्चों की इम्यूनाइजेशन कोविड के दौरान नहीं हो सकी, फौरन से अपने बच्चों को वैक्सीन करवाइए। वैक्सीन जिंदगी बचाती हैं, वैक्सीन फ्यूचर बनाती हैं, और वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव है। दूसरी चीज जो है वो कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी केसेस हैं, अभी भी कम्युनिटी के अंदर है, स्कूल ओपन हो चुके हैं बच्चों के, आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो आपके पास जो 4-5 चीजें गवर्नमेंट ने बताई हैं दुनिया जहान के अंदर कोविड से बचने के लिए, वो है मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग करना। तो बराए मेहरबानी खुद भी कीजिए, अपने बच्चों को भी कराइए। तीसरी चीज कि अगर आपके बच्चे को कोई भी बीमारी लाहक होती है किसी भी किस्म की, तो आजकल सारे हॉस्पिटल्स ओपन हैं, अपने बच्चों का इलाज में देरी नहीं कीजिए और फौरन से उनको दिखाने की कोशिश कीजिए। चौथी चीज ये कि जो सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर आवाम की बहबूद के लिए काम कर रही है। इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है गवर्नमेंट के साथ, और सारी सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एनजीओ के नाम से जानते हैं, इनको गवर्नमेंट ने इजाजत दी है आपके साथ काम करने की। ये गवर्नमेंट से इजाजत लेने के बाद आपके कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इनके साथ तआवुन कीजिए। आखिरी दो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, एक तो पोलियो का, जिन एरियाज में एक्सटेंड हो गई है पोलियो की वैक्सीन, तो अगर आपके घर पोलियो के कतरे पिलाने वाले आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। क्योंकि 5 दिनों में अगर वो वैक्सीन नहीं हो सकी क्योंकि आपके बच्चे घर पे नहीं थे या कहीं आप लोग कहीं गए हुए थे, तो बराए मेहरबानी अगर वो आपके घर आ रहे हैं तो पिलाइए। दूसरा ये कि स्ट्रॉन्ग हार्ट को रखने के लिए 3 चीजें करना जरूरी है, हेल्दी डाइट मतलब मुतवाजन गजा, एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश, और आखिरी चीज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज।
मोबाइल फोन जो है उस पर मैसेजेस पब्लिक सर्विस से मुतालिक भेज सकें
जी। सुना होते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आते हैं, गवर्नमेंट ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि बहुत सारे जो प्राइवेट कॉरपोरेशन हैं उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलके जो सेफ मैसेजेस हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप अब जैसे जैसे हमारी रिंगटोन पे जो है हर जब मैं किसी को फोन करता हूँ तो फौरन से वो मैसेज आने शुरू हो जाते हैं रिंगटोन पे, जो जो गवर्नमेंट का मैसेज है, हैंड सैनिटाइजर का, स्कूल ओपनिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का. सो ये बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रही है.
बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर अली फैसल आपका, डॉक्टर नुसरत फारूकी साहिबा, डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख साहब और यासिर शफीक साहब कि आप इस प्रोग्राम में आए. और आलमी दिन के मौके पर दिल के से बेहतर तोहफा पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या हो सकता है कि आप लोगों ने आके इतनी अच्छी बातें उनको बताई कि किस तरह वो अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं, न सिर्फ दिल की बीमारियों से बल्कि बहुत सारी बीमारियों से जिनमें सर फहरिस्त हिफाजती टीके हैं. तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आप चारों का प्रोग्राम में आने के लिए.
शुक्रिया.
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर. जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए. दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर. अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है. इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com.
और समीन, अब मैं आपको एक रिपोर्ट सुनवाना चाहती हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको बहुत से लोग बीमारी ही नहीं समझते, यानी हकलाहट. आपने देखा होगा कि अक्सर फिल्म में और टेलीविजन में, रेडियो के प्रोग्रामों में ऐसे किरदारों को दिखाया जाता है जो हकलाते हैं, और उसमें ऐसा लगता है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि ये कोई ऐसी चीज है जिसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए. हालांकि ये एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन है, और बजाय मजाक उड़ाने के और उन लोगों में जो हकलाते हैं एहसास से कमतरी पैदा करने के, अगर उन्हें एतमाद देने की कोशिश की जाए और बचपन में खासतौर पे अगर वालदैन उनका इलाज कराएं तो ये मर्ज दूर हो सकता है. इस बारे में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट सुनवाते हैं समन खान की, जो उन्होंने लाहौर से हमें भेजी है.
मुझे सही तरह से याद नहीं है कि मेरी मदर ने कितनी दफा आंसू बहाए हैं इस बात पर, मेरे साथ हम दोनों ने मिल के बहाए.
ख्वाजा अब्दुल हक जानते हैं कि हकलाहट एक इंसान की खुद एतमादी को कितनी गहरी ठेस पहुंचाती है. वो 35 साल तक इस मसले से लड़ते रहे हैं.
स्कूल में इवन टीचर्स मुझे कहते थे कि इसने तो जब आंसर नहीं करना होता तो ये नहीं बोलता, अदरवाइज तो बोल रहा होता है. एंड दैट कल्मिनेटेड फ्रॉम द फैक्ट कि कुछ डेज आते हैं जब आप किसी हद तक ठीक हो जाते हैं, कुछ डेज आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा अटक रहे होते हैं. मजाक उड़ाया जाता था स्कूल में, बहुत हुई बुलिंग हुई मेरी, और मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई इससे ना गुजरे जिससे मैं गुजरा और हकलाने वाले गुजरते हैं.
पाकिस्तान में मुख्तलिफ थेरेपीज के जरिए हकलाहट कम करने के कई प्रोग्राम्स मौजूद हैं. माहिरीन कहते हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट के पास अमूमन बालिग अफराद आते हैं क्योंकि वालदैन अक्सर हकलाहट को मर्ज नहीं समझते.
एक ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर बच्चा ठीक से बात नहीं करता तो लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, कोई दवाई हो जाएगी, हमें कोई दवाई मिल जाएगी. स्टटरिंग के लिए या स्टैमरिंग के लिए या कोई भी स्पीच या लैंग्वेज डिसऑर्डर है उसके लिए कोई दवाई नहीं होती. हम बोलने के तरीके को बेहतर बनाते हैं.
मामा आओ.
माहिरीन के मुताबिक हकलाहट उम्र भर साथ रहती है, मगर इर्द गिर्द के अफराद के तामुन और मुनासिब इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है. दूसरी जानिब लोगों के मनफी रवैये तकलीफ की नफसियाती और जिस्मानी शिद्दत को बढ़ा देते हैं.
स्टिग्मा एक अटैच्ड है हमारे यहाँ, जिसको हम हकलाहट या लोकल जुबान में थथापन भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अटैच. हम लोगों को नाम रखते हैं, हम अपने टीवी प्लेज में उन करेक्टर्स को कॉमिक करके दिखाते हैं. इस वजह से लोग स्टैमर करने वाले लोग जो हैं उनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं या जो सेकेंडरी इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं.
स्कॉटलैंड से तरबियत हासिल करने के बाद आज अब्दुल हक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपने जैसे लोगों को बिला मुआवजा तरबियत दे रहे हैं.
स्टटरिंग जिसको बहुत ज्यादा उसको आप देखेंगे तो वो स्ट्रगल, मुंह की कंटोर्शंस और वो एक स्ट्रगल साफ नजर आ रही होती है. हमारी उसके खिलाफ फिजिकल टेक्निक्स हैं जो कि हम लगाते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त भी यूज कर रहा हूँ. फिर शेम का बहुत ज्यादा होता है कि यार मैं बेशक खामोश रह जाऊँ, मुझे अटकना नहीं चाहिए बोलकर. तो बेसिकली It is two tires. Physical and psychological techniques hai hamari.
Human brain usko bata rahe hai na ye sakhat hai naram hai. You are putting words to what she is doing. Eh dekho eh naram hai in haath lao.
ماہرین کے مطابق ننھے بچوں میں بولنے کا آغاز کرنے پر یہ مسئلہ ابھر سکتا ہے کیونکہ اس وقت وہ الفاظ کا ذخیرہ اپنے ذہن میں اتار رہے ہوتے ہیں لیکن ہکلاہٹ موروثی مسئلہ بھی ہو سکتی ہے
ہکلاہٹ کا شکار بہت سی مشہور شخصیات سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے تجربات کا اظہار کھل کر کرتے ہیں جس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سپیچ آرڈر کو سنجیدہ لیں اور اس مسئلے سے دو چار افراد کی دل آزاری کر کے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کریں سمن خان وائس آف امریکہ لاہور
اور سامعین اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے شہناز عزیز کو آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف